श्रीमद् भागवतम क्लास बाय हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 17th चैप्टर 9 वर्सेस।
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 स्कंद 10 अध्याय 17 श्लोक संख्या 9 तत्र एकदा जलचरम गरुडः भक्ष्यम्
ईप्सितम् निवारितः सोवरिणा प्रसह्य शुदितः अहरात् तत्रेकदा जलचरम् तत्रेकदा जलचरम् वरुणो भक्ष्यमीप्सितम् गरुडो भक्ष्यमीप्सितम् निवारिता सौभरिणा निवारिता सौभरिणा प्रसह्य क्षुदितोर्हनत् प्रसह्य क्षुदितोर्हनत्
Thank you.
तत्र वहां उस सरोवर में एकदा एक बार जलचरम जल के प्राणी को गरुड़ गरुड़ ने भक्ष्यम अपना खाद्य इप्सितम इच्छा की निवारितः मना किया गया सौभरिणा सौभर मुनि द्वारा प्रसह्य साहस करके क्षुदितः भूख आहरत खालिया। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद उस सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को जो कि उसका सामान्य भक्ष्य है खाना चाहा। जल के भीतर ध्यानमग्न सौबरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस दिखाया और भूख होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। तात्पर्य अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि गरुड़ यमुना नदी के उस सरोवर तक क्यों नहीं पहुंच सका। मछलियों को खाना पक्षियों का स्वभाव है, अतः यदि गरुड़ भगवान की व्यवस्था के फल स्वरूप मछली खाकर अपना जीवन निर्वाहित करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता। किंतु सौभरी मुनि द्वारा एक महातर प्राणी को अपनी भोज वस्तु खाने से मना किए जाने एक अपराध बन जाता है। श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने के अनुसार सौभरी ने दो अपराध किए हैं। एक तो यह कि उन्होंने गरुड़ जैसा उच्च महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया और दूसरा यह कि उन्होंने गरुड़ को उनकी इच्छा तृप्ति करने से रोका। ओम ज्ञानविरंदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनेभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीशाकामितांश्च कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोऽस्तु ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी पिछली बार हमने चर्चा किया था रविवार को किस प्रकार छठे श्लोक में वर्णन आया किस प्रकार गरुड़ और कालिया के बीच में ये दुश्मनी क्यों हुआ। सारे सर्पों ने ये निर्णय किया था कि गरुड़ को हमको जो अर्पण किए गए जो फल है दूध है इत्यादि हम अर्पण करेंगे, लेकिन गरुड़ को वो सब नहीं मिल रहा था। बड़े क्रोधित होकर गरुड़ ने उन सर्पों से पूछा कि आपने कहा था कि ये सब मुझे अर्पण करेंगे, मिल नहीं रहा है। तो सारे सर्पों ने कहा कि हमारा दोष नहीं है, ये कालिया करके है, वो अपना भी नहीं देता है, जो हम आपको देते हैं वो भी खा लेता है। बड़े क्रोध के साथ गरुड़ उस कालिया को पकड़ने के लिए पहुंचे। जब कालिया को पकड़ने के लिए पहुंचे तो क्या हुआ, ये कालिया गरुड़ को आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, तो दूर से उन्होंने जहर फेंकना शुरू किया, जहर को पूरा गरुड़ के ऊपर फेंकना शुरू किया। और भी नज़दीक में जब आए गरुड़ तो कालिया ने अपने फणों से गरुड़ को काटने के प्रयास किया। जैसा प्रयास किया तो गरुड़ ने क्या किया, अपने जो विंग्स अपने जो पंख होते हैं उस पंख से उस कालिया को उन्होंने जोर से मारा। ऐसा कालिया को उन्होंने जोर से मारा कि जोर से इतना कालिया को मारा तो कालिया एकदम डर गया। तो डर के मारे कालिया ने क्या किया, गरुड़ से बचने के लिए वो कालिंदी जिस जगह अभी कालिया दमन लीला किया था भगवान ने, उधर उस सरोवर में आके कालिंदी नामक तालाब में आके उधर शरण लिया। इसलिए ये पिछले के ये जो श्लोक है सातवां और आठवां श्लोक में इस बात को कहा गया है, खास करके आठवां श्लोक में कहा गया है सुपर्ण पक्ष उससे अभिहता मतलब मार खाते, तो कालिया अतीव युह्वलहा, कालिया बहुत अतीव दुखी होके ने क्या किया, हृदम विशेष कालिंदिया तद आगम्यम। ये जो कालिया हृदय उधर आके गरुड़ से बचने के लिए उधर आया, तो गरुड़ से बचने के लिए उधर क्यों आया, क्योंकि गरुड़ को उधर आना असंभव है, ऐसा पिछले श्लोक में वर्णन हुआ आठवां श्लोक में। तो प्रश्न आता है गरुड़ को उधर आना असंभव क्यों है, ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से गरुड़ उधर नहीं आ सकते। वो जो प्रश्न का जवाब देते हुए ये श्लोक से प्रारंभ होता है, दूसरी कथा प्रारंभ होती है। तो गरुड़ क्यों नहीं आ सकते कालिंदी में, उस बात का जवाब देते हुए तत्र ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, तत्र एकदा मतलब उस जगह पे, एकदा मतलब एक समय की बात थी। तत्र उस जगह पे क्या हुआ, जलचरम गरुड़ भक्षम इप्सितम, गरुड़ ने क्या किया, उनको इच्छा हुआ, गरुड़ो इप्सितम क्या इच्छा हुआ, भक्षम खाने का इच्छा हुआ, क्या खाने का इच्छा हुआ, जलचरम मछली खाने का इच्छा हुआ। तो मछली खाने का इच्छा हुआ। तो जैसे एक मछली खाने का इच्छा हुआ गरुड़ को, तो उसने क्या किया, उधर जैसे पहुंचे तो उधर एक शौबरी नामक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वो जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो जल के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तो गरुड़ जैसे उधर मछली खाने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, निवारितः गरुड़ शौबरी मुनि ने कहा कि अरे इधर इधर मत खाओ, मछलियों को मत खाओ, निवारितः। लेकिन उन्होंने निवारितः उन्हें मना करने पर भी तो प्रक्षः क्षुधितो रथा, तो गरुड़ को बहुत भूख लगा था, मना करने पर भी गरुड़ ने क्या किया, उन्होंने खाया, तो मछली को पकड़ लिया। तो इस श्लोक में इस प्रकार का वर्णन है। अभी है, हमने अभी तात्पर्य में सुना किस प्रकार गरुड़ जो है वो पक्षी है, एक पक्षी होने के नाते उनका स्वभाव है कि मछलियों को खाना, मछलियों को पकड़ के खाना। वैसे उनका आहार जो है वो जो नॉर्मल आहार होता है गरुड़ों गरुड़ का, वो कुछ भी खा सकता है पक्षी है, वो सर्पों को भी खा जाता है, कुछ भी खाता है। लेकिन जब वो विहरण करने के निकलते हैं, ये पक्षी का स्वभाव होता है, जब विहार करने के निकलते हैं तब वो मछली को पकड़ता है। मतलब मछली मतलब उनके लिए फीस्ट है, रोज तो फीस्ट नहीं खाता कोई व्यक्ति, तो कभी एकदा एक बार ऐसा हुआ, चलो आज फीस्ट करते हैं, मछलियों को खाएंगे, ऐसा उनका विचार था। तो जब इधर आए गरुड़, तो इधर वर्णन हुआ है कि शौबरी मुनि ने अपराध किया। अभी शौबरी मुनि का अपराध का कारण क्या है, अपराध क्या है वो तो बाद की चर्चा करेंगे। अपराध का कारण क्या है, अपराध का कारण ये है कि गरुड़ का स्थिति, द पोजिशन ऑफ गरुड़, उनको मालूम नहीं पड़ा वो कौन है। दूसरा, वो अपनी जो स्थिति है गरुड़ के तुलना में वो भी नहीं मालूम पड़ा, जिसको कहते हैं मर्यादा उल्लंघन। सारे अपराधों का जो मूल कारण होता है मर्यादा उल्लंघन। मर्यादा उल्लंघन क्यों होता है, जब हम अधिकार भेद को नहीं जानते। अधिकार भेद का अर्थ क्या है, मेरा कितना अधिकार है, दूसरा भक्त का कितना अधिकार है, वो नहीं जानने की वजह से मर्यादा उल्लंघन होता है। तो ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उपदेशामृत में भी हम एक श्लोक को प्राप्त करते हैं, कहा गया कि किस प्रकार एक एक भक्त को कैसे कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, कनिष्ठ भक्त के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कृष्णेत यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, जो कृष्ण का नाम लेता है तो क्या करना चाहिए, मनी मन में प्रणाम करना चाहिए। दीक्षस्त चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशम, जो दीक्षा ले चुका है उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। दीक्षस्त चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञवरण्य मन्य निंदादि शून्यम हृदयविच्छित संगलब्ध्वा, जो अनन्य निंदादि शून्यम, जो लोगों को जो ऐसे भक्त होते हैं जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, वो किसी का निंदा नहीं करते, निंदादि शून्यम, वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको क्या करना चाहिए, शुश्रूषया उनका सेवा करना चाहिए। सेवा करते करते हृदयमिच्छित संगलब्ध्वा, वैसे जो शुद्ध भक्तों का संगति करने का तीव्र इच्छा रखना चाहिए। तो इस प्रकार तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन इधर किया गया है, क्या है वो, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ भक्त होते हैं उनको मनी मन में आदर देना चाहिए, उनको जाके सेवा करने लग जाएंगे तो उनका भी भक्ति नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं, उनको तो इतना फायदा नहीं होगा, थोड़ा हो भी जाएगा लेकिन उनका भक्ति नष्ट हो सकता है। वैसे इसके गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है जो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, तो अलग अलग स्तर के जो भक्त हैं उनको अलग अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये एक बात है। तो ये भक्त होते हैं और ये अभक्त होते हैं, उनके बीच में भी भेद को देखना चाहिए। भक्तों के साथ एक प्रकार व्यवहार करना चाहिए, अभक्तों के साथ एक प्रकार व्यवहार करना चाहिए, और जो ईर्ष्यालु होते हैं उनके प्रति एक प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तो भगवान उनके प्रति एक प्रकार व्यवहार होना चाहिए। इसलिए जो मध्यम अधिकारी होता है वो इन चार लोगों के बीच में भेद को देखता है, एक भगवान, भक्त, अभक्त और ईर्ष्यालु। तो ये चार प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार व्यवहार करता है। तो सारे जीवात्मा एक होने पर भी, सभी लोग या भक्तों के समय सभी भक्त होने पर भी, लेकिन जब व्यवहार की बात आता है वो जैसे जैसे जिस स्तर के भक्त है उस प्रकार व्यवहार करता है, वो भी अपना स्तर को भी जानते हुए व्यवहार करता है। इसलिए अधिकार को जानना अति आवश्यक है। अधिकार को नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप में ये मर्यादा उल्लंघन होता है। कौन सी बात किसको किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये तभी संभव होता है जब हमको अधिकार मालूम है। जैसे सरल भाषा में ये कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं छोटी मुंह में बड़ी बात। अगर छोटा है तो छोटी बात रखो, उसके लिए शोभा देता है। अगर वो बड़ी बड़ी बात कहने लग जाए, जैसे कभी कभी होता है माता पिता और कुछ बुजुर्ग लोग चर्चा कर रहे हैं कोई पारिवारिक समस्या के संबंध में, उधर एक बच्चा पहुंच के अपना सलाह देने लग गया है, कभी कभी होता है, तो सारे लोग दूसरे इसको देख के हंसेंगे, जाओ ठीक है जाओ हम देखेंगे, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा कुछ चीज़ है जो बड़े लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसी व्यवहार है जो भक्तों के बीच में जो होता है, जो वरिष्ठ भक्तों के बीच में होता है, वो कनिष्ठ लोग नहीं समझ सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वैसे बातचीत करते हुए अपने शिष्यों को ऐसे कह दिया था, आई रोट मेनी लेटर्स टू माई ग्रॉड ब्रदर्स, नन ऑफ माई ग्रॉड ब्रदर्स हेल्प मी, कोई मुझे मदद नहीं किया। तो ऐसे चर्चा कर रहे थे, मैं अमेरिका गया, लोगों को लेटर लिखा मैं गौड़िया मठ में, आप मुझे शिष्य भेजो, कुछ भक्तों को भेजो, इधर प्रचार करने का बहुत मौका है, कुछ धन भेजो, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। तो तब एक कुछ समय के बाद की बात है, एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी ये आपके एक उनका गुरु भाई का एक नाम लिया, प्रभुपाद जी गुरु भाई का एक नाम लिया, प्रभुपाद जी वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। प्रभुपाद जी तुरंत क्रोधित हो गए, हु आर यू टू टेल दिस, तुम कौन होते उनके बारे में बात करने वाला, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे गुरु भाई है, लेकिन तुम कौन हो, तुम उनके शिष्य के बराबर हो, तुम्हारे गुरु के बराबर है, जिससे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता उनसे बात करने का। तो इसको बोलते हैं अधिकार। अधिकार को जानते हुए हम अपना व्यवहार करना चाहिए। तो शौबरी मुनि भले ही पानी के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको गरुड़ का जो स्थिति है वो नहीं मालूम था, और गरुड़ की तुलना में उनकी क्या स्थिति है वो भी नहीं मालूम था। तो इसके वजह से उन्होंने सोचा कि मैं गरुड़ को इधर से निकाल दूंगा, आज्ञा दूंगा गरुड़ को। दूसरा अपराध किया था, गरुड़ को अपना आहार से वंचित कर दिया। तो ये दो अपराध इधर किया। तीसरे अपराध का वर्णन आगे के श्लोक में आता है, जहां शौबरी मुनि बड़े क्रोधित होकर उन्होंने शाप भी दिया। तो कुल मिला के तीन अपराध किए। पहला अपराध था आदेश देना वाचिक, दूसरा अपराध यह था शारीरिक, तीसरा अपराध क्या था मानसिक, क्रोधित होना, यानी कर्मणा मनसा वाचा। तीनों अपराध शौबरी मुनि ने किया। शौबरी मुनि ने इसलिए किया क्योंकि वो मर्यादा उल्लंघन की वजह से, खास करके मर्यादा उल्लंघन इसलिए होता है जैसे मैंने कहा भी, अधिकार को नहीं जानना। तो अधिकार को कैसे जाना जाए, अधिकार को हम अपना अधिकार कैसे जान सकते हैं, और अन्य जो भक्त होते हैं उनका अधिकार को कैसे जान सकते हैं। ये जो अधिकार है दूसरे भक्तों का या अपना अधिकार, वो दो तरीके से होता है। एक होता है परमार्थिक अधिकार, दूसरा होता है व्यवहारिक अधिकार। अस्तित्व में व्यवहारिक अधिकार और परमार्थिक अधिकार ये दोनों भिन्न हैं। जैसे मान लीजिए एक भक्त को हमने कहा, प्रभु जी उनको आदर देना, ये बहुत सीनियर भक्त है। तो ये भक्त ने आके कहा, प्रभु जी आप तो बोल दिया ये सीनियर भक्त हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो कोई नियम पालन नहीं करते, वो तो चार नियमों में एक तोड़ते भी हैं और कभी वो जब भी बराबर नहीं करते, भक्तों के जैसे व्यवहार नहीं करते वो, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सीनियर भक्त हैं। जब ये कहा जाता है कि ये भक्त सीनियर भक्त हैं तो उनका सीनियरिटी, उनका वरिष्ठता पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहीं कहा गया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा गया है। तो इसलिए ये व्यवहारिक जो दृष्टिकोण से भी एक वरिष्ठता भी एक अधिकार होता है, तो दोनों को ख्याल में रखना पड़ता है। एक क्या है परमार्थिक वरिष्ठता, दूसरा क्या है जो व्यवहारिक वरिष्ठता। एक व्यक्ति की वरिष्ठता जो है चार चीजों के ऊपर आधारित रहता है, ज्ञान के ऊपर, आयु के ऊपर और आश्रम के स्तर के ऊपर और अनुभव के ऊपर आधारित होता है। तो ये चार चीजों के ऊपर आधारित होकर व्यक्ति का वरिष्ठता होता है। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, या कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, कोई व्यक्ति बुजुर्ग है। मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कुछ गलतियां करते हैं या कुछ बराबर व्यवहार नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको उम्र में वरिष्ठ होने की वजह से उनको आदर दिया जाता है। कुछ भी हो उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि आयु भी उसकी वरिष्ठता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। भले ही परमात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुका है, जो कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है, उनका हृदय एकदम बिल्कुल नम्र है, बहुत अच्छे सारे सद्गुणों से संपन्न है, वही वरिष्ठ है। लेकिन फिर भी हमको ये देखना चाहिए कि ये जो व्यवहारिक जो तारतम्य है वो भी ख्याल में रखना जरूरी है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पास मुकुंद दत्त रघुनंदन ठाकुर अपने उनके साथ में निकले, उनके पुत्र है रघुनंदन, मुकुंद दत्त लेके गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा मुकुंद दत्त से कि कौन है ये, तो मुकुंद दत्त ने कहा ये मेरे पिताजी और मैं उनका पुत्र हूं, ये मेरे पिताजी है वे मैं उनका पुत्र हूं। तो महाप्रभु इस बात को सुन के बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि मुकुंद दत्त को मालूम था कि उनके पुत्र रघुनंदन जो है वो उनसे भी भक्ति में बहुत आगे है, लेकिन भले ही वो उनका पुत्र है लेकिन उन्होंने क्या कहा ये मेरे पिता है। ये व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन परमार्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, इधर आप देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, वरिष्ठ है, लेकिन फिर भी सारा गौड़ी वैष्णव समाज क्या कहता है, सारे वैष्णव गोस्वामियों में कौन लीडर कौन है, रूप गोस्वामी। क्यों उनको लीडर माना गया है, वाई? इस बात के ऊपर विचार किया जाए, सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का कृपा किसको मिला था, रूप गोस्वामी को मिला था, ठीक है। इसके वजह से उनको सारे गोस्वामियों का लीडर माना जाता है, उनको वरिष्ठ माना जाता है। लेकिन स्वयं रूप गोस्वामी कहते हैं वराह रूप हम, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो एक मूर्ख हूं, सनातन गोस्वामी पर मेरे जो भाई है उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये वैष्णव व्यवहार बड़े सूक्ष्म है, जब हम सूक्ष्म विचार करते देखेंगे तभी हमारा व्यवहार बराबर हो सकता है। जड़ बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म तत्वों को नहीं समझ पाते, इसलिए वैष्णव व्यवहार जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। जब तक हमारा वैष्णव के साथ बराबर व्यवहार नहीं होता है तब तक ये समझना चाहिए कि अपराध होते जाएंगे और हमारा भक्ति जो है खतरे में रहेगा। इसलिए वैष्णव एटिकेट जो है इसकी शिक्षा जो है सबसे प्रारंभ में दिया जाता है सारे भक्तों को, कैसे किस प्रकार कौन से भक्त किस प्रकार बात करना चाहिए, कितना हद तक हमारी योग्यता है, ये सब जानना जो है ये वैष्णव व्यवहार कहा जाता है, वैष्णव एटिकेट कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए शौबरी मुनि ये इस बात को पहचान नहीं पाए गरुड़ की स्थिति को, तब एक प्रश्न आता है प्रभु जी ये तो बहुत सूक्ष्म वाली बात है, ये कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे, कब कौन सा चीज किसके साथ कैसे करना चाहिए, बड़े बुद्धि से परे है। तो उसके लिए एक सरल रास्ता है। सरल रास्ता क्या मालूम है, जब भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, जब मन में आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है कौन कैसा है क्या करना है, उस समय चुप रहना बहुत अच्छा है मौन रहना बहुत अच्छा है। तो मौन रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, वैश्यों को निंदा नहीं करेंगे या उनको आदेश देने नहीं जाएंगे, बहुत सारे अपराध से हम बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है, उसका कितना हद तक आप कर पाएंगे, एक दो दिन, तीन दिन या दो साल, तीन साल, असली बात यह है जब आप वैष्णवों की महिमा को जानेंगे, भक्तों की महिमा को जानेंगे, तो अपने आप ये जो वैष्णव व्यवहार जो है अपने आप ठीक अपने स्थान में हो जाता है। जैसे इधर शौबरी मुनि गरुड़ की जो महिमा है वो नहीं जानते। कभी कभी भी दक्षिणनाथ की यात्रा में गया था तो एक जगह गरुड़ जी के विषय में कह रहा था, तो बाद में दो तीन भक्तों ने कहा मुझे, प्रभु जी गरुड़ी जी इतना महान है क्या, हम तो ऐसे ही बस देखते नहीं है गरुड़ जी को आते हाँ गरुड़ है ऐसा बात करते बस। लेकिन गरुड़ जी के विषय में बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है, ऐसे संक्षिप्त में सारांश में, दक्षिण भारत के एक आचार्य हुए जिनका नाम था वेदांत देशिकर, वेदांत देशिकर करके एक आचार्य हुए जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, रामानुजाचार्य के बाद प्रकट हुए, रामानुजाचार्य के 150-130 साल के बाद प्रकट हुए वेदांत देशिकर। ये इनकी महिमा तो बहुत अगाध है, वो स्वयं जो है घंटावतार माना जाता है। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उधर भगवान के लिए जो घंटी बजती है ना, वो अभी जाके देखेंगे उधर घंटी नहीं होगा, क्योंकि उनकी वेदांत देशिकर के माता पिता जब गए थे, भगवान स्वयं प्रकट हुए उनकी माँ के सामने, और उन्हें जो उनकी घंटा होता है ना बेल, वो उनकी माँ को दिए, तो माँ ने क्या किया घंटा को खा लिया तो उससे गर्भवती होकर प्रकट हुए वेदांत देशिकर, उसे उनको घंटा अवतार कहा जाता है। तो उन्होंने दो स्तोत्रों को रचना किया गरुड़ जी के विषय में, गरुड़ जी के विषय में दो स्तोत्रों की रचना किया उन्होंने, उनके गुरु ने उनको गरुड़ मंत्र दिया था वेदांत देशिकर को, तो गरुड़ मंत्र दे के उन्होंने कहा कि आप गरुड़ जी को उपासना करो। तो कांचीपुरम में नजदीक में एक गांव है कांचीपुरम में ही है समझ लीजिएगा, उधर उनका जन्म हुआ था, उधर उनका गुरु ने कहा था कि गरुड़ मंत्र देता हूँ तुम अभी अभ्यास करो। तो ये 20-21 साल के बाद की बात है, उधर से निकल के पहुंचे तिरुवहिंद्रपुरम करके एक जगह है आप चिदंबरम के पास में, उधर ये वेदांत देशिकर एक पहाड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने गरुड़ पंचाक्षरी मंत्र को उन्होंने उच्चारण किया था, गरुड़ मंत्र को। तो मंत्र को उच्चारण करते हुए तपस्या करते हुए तो क्या स्वयं गरुड़ जी प्रकट हुए, स्वयं गरुड़ प्रकट हुए। तब गरुड़ जी ने क्या किया, उनको एक विग्रह को प्रदान किया, क्या विग्रह प्रदान किया, हयग्रीव का विग्रह प्रदान किया। हयग्रीव भगवान का एक अवतार है, तो भगवान का एक अवतार रहे हयग्रीव, मतलब जो अश्वमुख वाले हयग्रीव, हय शीर्ष हयग्रीव। तो गरुड़ जी ने वो विग्रह को क्यों प्रदान किया, क्योंकि गरुड़ जी वो विग्रह को रक्षा करते हैं, वो विग्रह को रक्षा करके सेवा करते हैं। तो आप बोलोगे भगवान को कौन रक्षा करेगा भाई, हयग्रीव कौन है, विद्या प्रदान करने वाले भगवान का स्वरूप है। तो उनको रक्षा करने वाले मतलब क्या है, जो गरुड़ जी जो हैं विद्या को रक्षा करने वाले हैं। इसलिए आचार्य जो हैं प्राय जब भी आचार्य की पदवी जब प्राप्त होती है, जब एक प्रथा है किसी को एक मठ के आचार्य के रूप में जब घोषणा की जाती है, उस समय उनको एक विशेष गरुड़ का आवाहन करके उनको शक्ति प्रदान करने की याचना की जाती है। क्योंकि आचार्य का कर्तव्य क्या है, असली जो वैष्णव सिद्धांत है उसको संरक्षण करना, जो असली वैष्णव सिद्धांत को संरक्षण करने का जो कार्य है, जो भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया, गरुड़ जी को दिया। इससे जो भी उस कार्य में रत होते हैं तो वो गरुड़ जी का एक तरीके से शक्ति के द्वारा ही वो करते हैं, ऐसा प्रतीक है। यानी जहां सिद्धांत की रक्षा होती है वो गरुड़ जी के द्वारा होता है। तो ये पिछली बार हमने थोड़ा सा वेद स्वरूपा करके कहा था, लेकिन ये बहुत विशेष रूप है गरुड़ का। विशेष कार्य है, क्या है, उस सिद्धांत की रक्षा करना। तो वेदांत देशिकर को उन्होंने क्या किया, एक हयग्रीव का विग्रह प्रदान किया। वह विग्रह अभी भी है उधर तिरुवहिंद्रपुरम करके जगह है, उधर जाएंगे आप विग्रह पहाड़ के ऊपर देख सकते हैं। तो बड़ा अद्भुत विग्रह है ये, ऐसा लगता है कि बस सभी जागृत भगवान से बात करो, उस प्रकार का विग्रह है। स्वयं साक्षात गरुड़ ने उनको वेदांत देशिकर को दिया और उन्हें कहा कि ये विग्रह का आप वैसे उपासना करो। और हयग्रीव मंत्र भी प्रदान किया और हयग्रीव को उपासना करने लगे है वेदांत देशिकर, और तब से वो गरुड़ जी का भी उपासना करने लगे। हयग्रीव का विग्रह प्राप्त करने के बाद भी गरुड़ मंत्र के द्वारा ही वो शुरुआत करके हयग्रीव को उपासना करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, उस समय बहुत प्रचलित हो गए, बहुत शक्तिशाली है वेदांत देशिकर, उन्हें बहुत सारे चमत्कार भी किए। तो एक जो सांप वो कुछ करने वाला था ना, सांप नचाने वाला, सांप वो दिखाता रास्ते पे जो पैसा बनाते, क्या बोलते, क्या बोलते, सरपया, सवेरा, सवेरा, हाँ सवेरा को मालूम पड़ा कि वेदांत देशिकर ऐसा है। सब लोग ने कहा कि गरुड़ जी का उपासना करते हैं, उनको कोई जहर ये लगा नहीं सकता, कोई सांप कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उनको सुना ही पड़ा। तो एक बार वेदांत देशिकर जा रहे थे रास्ते में, ये सवेरा क्या किया तो उन्होंने कुछ सांपों को छोड़ दिया उनके ऊपर, बहुत जहरीले सांप थे। तो वेदांत देशिकर ने एक छाले एक ऐसा लाइन खींचा, तो क्या हुआ, वो लाइन के बाहर वो सांप आ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सवेरा और क्रोधित हो गया, क्योंकि वो जब कोई हारने वाला रहता है उसके अंदर बहुत क्रोध आता है। उसने क्या किया, खुद कोई एक सांप को निकाल के वो लाइन के बाहर रखा ताकि वो सांप जो उसको काटने के लिए जाए, बहुत जहरीला सांप था। तब वेदांत देशिकर उधर गरुड़ का मंत्र उच्चारण करने लगे। तो क्या हुआ, अचानक एक पक्षी आया और वो सांप को उठा के लेके जा रहा था। सवेरा बिल्कुल परेशान हो गया, प्रणाम करके बोला कि अरे आप सांप को उठा के लेके जा रहे हो, आप मेरा जीविका कैसे चलेगा। तब वापस गरुड़ मंत्र उच्चारण करके वही पक्षी आके वापस सांप को देके चला गया। तब उस समय की बात है, उन्होंने एक स्तोत्र का रचना किया जिनका नाम है गरुड़ दंडकम। और भी उसके पहले या उसकी बाद की बात है, उन्होंने गरुड़ पंचशत करके दो गरुड़ के ऊपर उन्होंने स्तोत्रों की रचना किया। एक 52 श्लोकों का है और दूसरा है कुछ 8 श्लोकों का या कुछ 5 श्लोकों का, ऐसा 5 का लगता है, 5 श्लोकों का ये गरुड़ दंडकम करके उन्होंने ये श्लोक को रचना किया। तो इसमें गरुड़ जी का महिमा को वर्णन करते हैं, गरुड़ जी कौन है या उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनका वर्णन 5 श्लोकों में उन्होंने किया, अद्भुत श्लोकों में किया। तो सबसे पहला ये जो गरुड़ के विषय में उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा जानने के लिए प्रयास करते हैं। दंडकम पाद पहला पाद है, वैसे मैं थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए प्रयास करूंगा। Garuda has designed the Vedas as his cage and used the cage as his seat. तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि गरुड़ जो है वेदों को एक पिंजरा के रूप में बनाया और उस पिंजरे के ऊपर वो बैठे रहते, यानी गरुड़ जी का आसन सिंहासन क्या है, वैसे पक्षी जहां बैठता है उसको पिंजरा बोला जाता है, लेकिन अगर असत में इधर आसन है, क्या है, सारे वेदों को अगर आसन के रूप में तुलना किया जाए वैसे सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, यानी गरुड़ जी का सिंहासन क्या है, वेद है। तो बाद में जो हिज लॉर्ड शिवनारायण बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज ऑफ हिज डिवोटीज, नो वन कैन स्टॉप लॉर्ड इन दिस एंडेवर्स, भगवान को कोई रोक नहीं सकता अपने भक्तों से जो दुश्मनी करता है, भक्तों से जो तकलीफ देता है उनको मारने पे भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा कैसे तत्पर रहते हैं, भगवान जो है वैकुंठ में तो कोई असुर तो है ही नहीं, है कि नहीं, वैकुंठ में भक्तों को रक्षा करने की तत्परता भगवान को नहीं रहती है।
क्योंकि अब असुर कहाँ है, सब लोग इसलिए उनके जो आयुध है, शंख है या चक्र है, गदा है, वो सब आराम से घूमते फिरते रहते हैं, अपने टाइम पास करते रहते हैं, भगवान के पास में साथ में नहीं रहते। लेकिन इस भौतिक जगत में जब भगवान प्रकट होते हैं उनका आयुध अपने पास में रहता है। लेकिन मान लो कोई सोल्जर है, कोई सैनिक है, वो आयुधों को अपने साथ में लेके कब घूमता है? जब खतरा होती है कि नहीं, जब किसी को खतरा से बचाना है, किसी को खतरे से बचाने की जब इच्छा होती है, मैं इनसे कचरे से बचा, तब उनको ऐसा लगता है कि बस आयुधों को पास में रखता है। नहीं तो वैकुंठ में सुदर्शन है, क्या भगवान के हाथ में रहता है सुदर्शन वैकुंठ में? नहीं नहीं, वैकुंठ में भगवान के हाथ में सुदर्शन नहीं रहता है, वो सुदर्शन जो है फिर घूमता रहता है, अपने 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 घर में रहता है, अपने पत्नी बच्चों के साथ रहता है, और खाली सुदर्शन चिन्ह रहता है बस उनके मुकुट के ऊपर, जैसे गदा है, गदा जो है कौमुदी की गदा जो है वो भी अपने घूमता रहता है, भगवान के हाथ में नहीं रहता है। भगवान इन आयुधों को कहाँ धारण करते हैं? वो इस भौतिक जगत में खास करके अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, तभी वो गदा शंख चक्र गदा पद धारण करके आते हैं। जैसे ये भी अस्त्रों का भी अलग अलग विशेषता है, जब भगवान प्रकट हुए कृष्ण के रूप, जब कृष्ण स्वयं प्रकट हुए उनके राइट हैंड में गदा था, राइट हैंड में गदा था, यानी उनको इतना आतुरता था, कहाँ है कम्स मारूंगा ऐसा था। मान लो कि आपके कोई लेफ्ट हैंड में है, इसका मतलब क्या, अभी टाइम है। कभी कभी वो सारे भक्तों को जय करने के बाद, असुरों को मारने के बाद, तो वो भगवान जो गदा को कहाँ पकड़ते मालूम है? लेफ्ट हैंड में पकड़ते। वो भी कैसे पकड़ते? ऐसे पकड़ते, कैजुअल, केयरलेस ऐसा। लेकिन जब वो राइट हैंड में है मतलब अभी कोई खतरा है, मारूंगा। इसके भी बहुत विशेषताएं हैं कि गदाओं का, पंचायुधी पांचों आयुधों को भगवान धारण करते, अच्छे करके वो धारण करते हैं। अभी इधर तत्परता है, इसलिए इधर कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो भक्तों का दुश्मन होता है, असुर होता है, भक्तों को तकलीफ देता है, वो कभी भी वो भगवान के जो तत्परता है, असुरों को मारूंगा, भक्तों को रक्षा करूंगा, उससे कोई बच नहीं सकता। तब इसलिए गरुड़ जी भी क्या करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ को मालूम है कि असुरों को मारने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। वो कभी भी भगवान के पास जितनी तत्परता है भक्तों की रक्षा करने की, उतनी तत्परता जो गरुड़ के पास है। जब वर्णन आता है, हमेशा गरुड़ की दो पत्नियां हैं, उनका नाम है रुद्रई, दूसरा है सुकीर्ति। गरुड़ की दो पत्नियां हैं, एक कर्नाटक में एक मंदिर है, गरुड़ का ही मंदिर है, जहां वो दो पत्नियों के साथ में उनका भक्तों को सेवा देते हैं। तो ये गरुड़ की दो पत्नियां जब गरुड़ जी जाते हैं, एक तरीके से उनको बड़ा आनंद आता है। क्या आनंद आता है? हमारे पति जो है भगवान की सेवा में गया। दूसरा क्या है, गरुड़ की विरह में वो बड़े दुख को अनुभव करती है। जब भगवान असुरों को मार के सब हो गया, एक शांति से आगे बैठ गए, होता है ना जब कोई विक्ट्री होता है, कोई आप कोई खेल कूद में कोई जीतते हो तो क्या होता है, बाद में शांति से बैठ के फ्री रहते हो ना, तो समय गरुड़ अपना फ्री होके जब घर वापस आते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि ये उनकी दोनों पत्नियां उनको बड़े प्रेम से आलिंगन करती हैं। जब उनको प्रेम से आलिंगन करती हैं तो गरुड़ जो हैं उनको बड़ा आनंद होता है, उनके शरीर जो है उनके अंदर सारे पंख जो है वो एकदम बिल्कुल जैसे रोम खड़े हो जाते हैं तो वैसे पंख खड़े हो जाते हैं। जब पंख तीव्रता से खड़े हो जाते हैं तब वर्णन करते हैं कि गरुड़ जो है सर्पों को आभूषण रूप में धारण करते हैं। अभी कौन सा सर्प को कौन से आभूषण रूप में धारण करते हैं उसका नाम बताऊंगा। जब सर्पों को आभूषण रूप में धारण करते हैं तो क्या होता है कि गरुड़ जी जो है वो सर्पों का जो फण है वो एकदम खुल जाता है, और वो फणों के ऊपर मणियां होती हैं, वो जो मणि जो है इतना चमकने लग जाती है। वेदांत देशिकर कहते हैं ये दृश्य को देख के ऐसा लगता है कि ये सारे जो सर्प है गरुड़ जी की आरती कर रहे हैं। कैसे आरती कर रहे हैं? वो जो स्पेंडरस ग्रुप ऑफ द रेड रेस अपियर एट द टाइम एज द मंगल आरती टू गरुड़ा। गरुड़ के मंगल आरती के जैसे वो लग रहा है। आया आगे, गरुड़ के अनेकों अनेकों नाम है, तो नामों का वर्णन हो रहा है। गरुड़ की बोला जाता है सुपर्ण। सुपर्ण क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके जो विंग्स, उनके जो पंख है वो कैसा है, बहुत सुंदर है, इसकी वजह से उनका नाम है सुपर्ण। और ये जो बड़े बड़े सांप है वो गरुड़ के आहार के रूप में है। और वेदांत ऋषिकर आगे कहते हैं, हे गरुड़ जी, आपने ये जो अमृत है देवलोक से पृथ्वी लोक तक लेके आया, उसका कारण हमने क्या पहले कहा था, क्योंकि उनके माँ को बचाना था। और बीच में क्या हुआ, इंद्र ने क्या किया, गरुड़ के ऊपर वज्र फेंका था, क्योंकि उठा के लेके जा रहे, तो वज्र जो है वो गरुड़ के कुछ लगा, कुछ चोट लगने का ऐसा लगा, लेकिन बाद में वो वज्र को फेंकने से, वज्र लगने की वजह से उनके शरीर के ऊपर, तो गरुड़ वो जो चोट है वो और सुंदर होने लगा, उसको गरुड़ को और सुंदर बनाया। ऐसा नहीं, मान लो कभी किसी को चोट लगता है वो छुपा के जाते हैं ना कि अरे दिखना नहीं चाहिए, लेकिन गरुड़ के ऊपर ये वज्रों का प्रहार करने की वजह से उल्टा उनका शरीर जो है और चमकने लगा और सुंदर होने लगा। तो आगे ये करते हैं, गरुड़ का और एक विशेषता है, उनको ऐसा माना जाता है संकर्षण के द्वारा शक्ति आवेश माना जाता है, संकर्षण का शक्ति आवेश हो आप। और आपने पांच रूपों में विस्तार किया है, सत्य, सुपर्ण, गरुड़, तार्क्ष्य और विहगेश्वर, ये पांच रूपों में आप प्रकट हुए हो। अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखे होंगे, आपने हनुमान के जो पांच मुखों का अगर देखा होगा, ये एक मुख जो है गरुड़ का मुख है। और आपके पास बहुत सुंदर पंख हैं, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके समतुल्य हो, इस प्रकार दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं। बाद में उन्होंने कहा, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपका स्तुति करते हैं, और आप जब पंखों को चलाते हो, उड़ते हो, उसका जो आवाज है वो भक्तों के लिए वेद ध्वनि जैसा है, और असुरों के लिए जो है वो भयानक का ध्वनि है, जैसे भय उत्पन्न करता है, मतलब कुछ बड़ा से ढांग करके आवाज आए तो भय उत्पन्न होता है ना, उसी प्रकार अभक्तों के लिए जो है वो भय का है। तो इस प्रकार ब्रह्म विद्या, योर क्रेन टीथ लुक लाइक द वज्र वेपन ऑफ वृंदा इंद्र, गरुड़ का जो भी मतलब चोंच बोलेंगे वो जो है इंद्र का वज्राज के समान है। मतलब क्या है, इंद्र अगर वज्राज फेंक देंगे ऐसे अनेकों वज्राज होंगे वो खा जाएंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। और जो व्यक्ति गरुड़ का उपासना करता है, गरुड़ को प्रणाम करता है, पूजा करता है, उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। इस प्रकार आप अपने अनंत दया जो है वो मुझे प्रदान करें, ताकि मैं आपका सेवा करता रहूं और विद्या प्राप्त करूं। आगे जो भी व्यक्ति गरुड़ मंत्र का उच्चारण करता है उनका धर्मार्थ काम मोक्ष तो ऐसे मिल जाता है, लेकिन वो करने वालों को, ये गरुड़ का उपासना करने वालों को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनको उनको ये जो मंत्रों का अर्थ जो है, वेदों के सारे जो मंत्र है वो मंत्रों का अर्थ जो है हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे अनेकों अनेकों बातें इसमें, तो इस बातों को कहते हुए श्री वेदांत देशिकर जो है वो ये गरुड़ दंडकम नामक ये स्तोत्र में गरुड़ जी का उपासना करते हैं। अभी हमने ये गरुड़ के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हम जितना हम कोई भक्त के विषय में उनका गुणगान सुनेंगे, उनकी वास्तविकता पहचानेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उनको उतना आदर दे सकते हैं। हमने अभी भी देखा है कि हम ऐसे गरुड़ को थोड़ा सा सस्ते में ले लेते हैं ज़्यादा उनके बारे में विचार नहीं, कोई वाहन है। तो भगवान का वाहन बनना भी ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गरुड़ भगवान का वाहन है, इसकी वजह से वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। एक और एक बात मैं आपको उनका आभूषणों के बारे में वर्णन करना था ना। गरुड़ के जो आभूषण हैं, सर्पों को आभूषण के रूप में कैसे धारण करते हैं, उसका वर्णन थोड़ा करना चाहते हैं। कौन से सर्पों को कौन से रूपों रूप में धारण करते हैं अभी? गरुड़ जो है आदिशेष को अपना लेफ्ट जो टोनेल है ना, अपना अंगूठा होता है ना के पैर का, उधर का एक रिंग के रूप में धारण करते हैं। बाद में अपने गुलिका नामक एक बड़ा सा सर्प है, उसको उन्होंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब वो बीच वाला अंगूठी होता है ना, एक अंगूठे के रूप में धारण करते हैं। वासुकी को वो जनुओं के रूप में धारण करते हैं, जनु के रूप में। और तक्षक को एक बेल्ट के रूप में धारण करते हैं, तक्षक का मतलब। यानी शास्त्र में जितने बड़े बड़े सर्प है ना, वो सारे सर्पों को अपना आभूषण के रूप में धारण करते हैं। कर्कोटक का वो ये जो सर्प है, उसको एक नेकलेस के हार के रूप में धारण करते हैं। पद्मा और महापद्म नामक जो सर्प है, उनको इयर रिंग्स के रूप में धारण करते हैं। और शंखचूड नामक जो सर्प है, उसको अपना जो बाल को बांध के जगह हेयर बैंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये गरुड़ का महिमा है, यानी गरुड़ का शक्ति है। जब इन श्लोकों में आया है ना कि गरुड़ अत्यंत वेग से आया, इतना शक्तिशाली है वो है, तो ये सब कितने शक्तिशाली हो जानना जरूरी है। और साथ साथ में इतने शक्तिशाली, भगवान को उतार के जाना है साधारण चीज थोड़ी ना है, इट्स नॉट अ जोक, उसके लिए कितने शक्तिशाली होना होगा, ये गरुड़ का विशेषता है। तो वैसे गरुड़ के प्रति शौबरी मुनि ने अपराध किया, क्यों? कारण क्या है? मर्यादा उल्लंघन। वो क्यों हुआ है मर्यादा उल्लंघन? क्योंकि अधिकार को नहीं जानना। सबको अपने अपने अधिकार के अनुसार रहना चाहिए। अंग्रेजी में कभी कभी कोई 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 कुछ गलत बोल देता है, कोई ज़्यादा बोल देता है, तो ऐसा बड़े लोग बोलते हैं बी इन योर लिमिट्स, मतलब क्या है, अपने अधिकार में रहो। तो हमारे अपने अधिकार का पहचानना, अपने संबंध में दूसरों के साथ हमारा क्या अधिकार है, उन दूसरों का भी वो अधिकार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अधिकार को हम तभी पहचान सकते हैं जब उनकी भक्तों की महिमा को हम जानेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? हाँ हाँ नहीं, मछली को नाम नहीं पता है, कहीं खाली लिखा है कि जलचरम। कोई खाने के लिए तो बड़ा ही होगा मछली, छोटा छोटा थोड़ी ना होगा उनका आहार। मतलब देखो, जो वासुकी को ऐसे धारण किया है जनु के रूप में, जो वासुकी मंदार पर्वत को इतना चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो गरुड़ जी का जनु है, तो मतलब ये मछली को जो काए होंगे तो कुछ हो भी बड़ा ही होगा, साधारण मछली होगा, बड़ा मछली होगा, वो भी फीस्ट है गरुड़ के लिए। नाम तो नहीं दिया है लेकिन समझ नहीं आ चाहिए वो कितना बड़ा मछली होगा, है कि नहीं? हाँ, एक्चुअली वो गरुड़ स्तंभ नहीं है, ध्वज स्तंभ है। ध्वज स्तंभ के पास गरुड़ होता है, इसको गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। समझ आप उस स्तंभ के ऊपर देखिए ऐसा ऐसा रहेगा, मतलब ध्वज है वो, तो कपड़े का ध्वज नहीं है वो, सोने का या आप कोई चांदी का, वो ऐसा ऐसा बनाते ताकि ध्वज, उसको ध्वज स्तंभ कहा जाता है। वो ध्वज स्तंभ के नजदीक में गरुड़ जी रहते हैं, भगवान का हमेशा दर्शन करते हैं। दर्शन मतलब क्या, तत्पर है, बोलिए कहाँ जाना है, आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, एवर रेडी ड्राइवर, कोई टाइमिंग्स नहीं है, 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। ये भगवान जो है अर्च वगैरह के रूप में है, क्यों है, भक्तों को रक्षा करने के लिए, तो रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं जाते हैं, तो जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है, इसलिए गरुड़ को उधर रखते हैं, ध्वज स्तंभ के पास रखते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।